नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरे आपसी विश्वास और दूरदर्शी दृष्टिकोण के आधार पर भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए साझा प्राथमिकताओं की पहचान की। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को कतई बर्दाश्त न करने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया और इस खतरे से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने वेनेजुएला में हाल की घटनाओं पर भारत की चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से वहां के लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। डॉक्टर जयशंकर ने आज लक्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के लोगों से ये बात कही। उन्होंने राजनीतिक, व्यापारिक और तकनीकी क्षेत्रों में लक्जमबर्ग के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना भी की। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए दशकों से शिविर चलाने की भी आलोचना की।
कई दशकों से वहाँ आतंकवादी शिविर चलते आ रहे हैं और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के प्रमुख शहरों से खुलेआम ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान और उनकी सेना न केवल आतंकवाद को संरक्षण देते हैं बल्कि उसे सामान्य और वैध ठहराने का प्रयास भी करते हैं, जैसे कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 13 पर 65 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के अनुसार 7 महिलाओं सहित इन नक्सलियों ने पूना मार्गेम पुनर्वास पहल के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष समर्पण किया। उन्होंने बताया कि ये माओवादी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, मार्ड डिवीजन और आंध्र ओडिशा सीमा डिवीजन में सक्रिय थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम से जुड़ी सभी सोशल मीडिया पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। दुष्यंत गौतम द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर अंतरिम आदेश देते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने दोनों राजनीतिक दलों को भाजपा के राष्ट्रीय सचिव को हत्या मामले में कथित वीआईपी बताते हुए उन पर निशाना साधने वाली कोई भी सामग्री पोस्ट करने से रोक लगा दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 जनवरी को पीएसएलवी C-62 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में घोषणा की है कि उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सवेरे 10:17 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत सहित अन्य देशों के 18 उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 6 लेन वाले बेंगलुरु कडपा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे के वनवोलू वंकरकुंटा खंड पर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। NHAI ने कहा कि 343 किलोमीटर लंबा यह आर्थिक गलियारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय संपर्क को मजबूत करेगा। आर्थिक मामलों के विभाग ने देश में अवसंरचना विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए 3 वर्षीय सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजना तैयार की है। ये पहल केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा के बाद शुरू की गई है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक संगठित ढांचा बनाकर राष्ट्रीय अवसंरचना को बढ़ावा देना है। बेनोनी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 389 रन का लक्ष्य दिया है। कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने सबसे अधिक 127 रन बनाए, वहीं एरोन जॉर्ज ने 118 रन की पारी खेली। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की सुंग शुओ यून को सीधे सेटों में हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का सामना कल जापान की तोमोका मियाजाकी से होगा। वहीं सात्विक और चिराग की जोड़ी ने चीनी ताइपे के यांग पो हसुआन और ली झे हुए को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।